डॉक्टर क्रेग कीनर अधिनियम व्याख्यान 21 अधिनियम 21 से 22 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह अधिनियम अध्याय 21 से 22 पर सत्र 21 है। ल्यूक ने पॉल की यात्राओं के बारे में विस्तार से बताया, विशेषकर उस सामग्री के दौरान जहां वह पॉल के साथ यात्रा कर रहा है। यह प्राचीन दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। दरअसल प्राचीन दर्शकों को अक्सर उपन्यासों और ऐतिहासिक कार्यों दोनों में यात्रा वृत्तांतों में रुचि होती थी, और आप इसे उन पत्रों में पाते हैं जहां लोग इधर उधर यात्रा के बारे में बात कर रहे होते हैं, और यह शिक्षित शहरी दर्शकों के लिए विशेष रूप से सच होगा जिन्होंने इनमें से अधिकांश स्थानों के बारे में सुना है। उनमें कुछ प्रतिध्वनियां थीं, कुछ चीजें थीं जिनकी वे कल्पना करते थे या इन स्थानों के बारे में सुनते समय सोचते थे, ठीक वैसे ही जैसे वे लोग पुराने नियम या नए नियम के कुछ हिस्सों को पढ़ते हैं जब वे पवित्र भूमि में घटित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। खैर, वे इनमें से कई स्थलों से परिचित थे और वे इन स्थलों पर घटित विभिन्न ऐतिहासिक चीजों के बारे में सोचते थे। ये उनके मन में सहायक संगठन थे। खैर, ल्यूक के मूल लक्षित दर्शकों के लिए इनमें से कई साइटों पर भी यह सच है, लेकिन मैं उन सब पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह आधुनिक दर्शकों के लिए दिलचस्प है, लेकिन कुछ अन्य चीजों जितना दिलचस्प नहीं है जिन्हें हमें वास्तव में कवर करने की आवश्यकता है। तो मैं बस इनमें से कुछ का उल्लेख करने जा रहा हूं। वह कोस और रोड्स द्वारा जाता है। ये महत्वपूर्ण एजियन द्वीप थे। रोड्स ने शुरू से ही रोम के पक्ष में रहना चुना था और इसलिए उन्हें रोम से वास्तव में अच्छा सौदा मिला। इन स्थानों पर प्रमुख उत्पाद वाइन के साथ लागत इत्यादि का उत्पादन होता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एजियन द्वीप थे जिनके पास से वे गुजर रहे थे, और फिर यह कहता है कि वे पडुआ से गुजरे जो दक्षिणी एशिया माइनर बंदरगाह था। अलेक्जेंड्रियन अनाज व्यापार के कारण वहां से यात्रा करने वाला जहाज आसानी से ढूंढें। आप रोम से जानते हैं कि मौसमी हवाओं वगैरह के कारण और प्रचलित हवाओं के कारण आप रोम से अलेक्जेंड्रिया की ओर वापस जा सकते हैं, लेकिन अलेक्जेंड्रिया से रोम जाने के लिए आम तौर पर आपको उत्तर की ओर जाना पड़ता था और फिर भूमध्य सागर को पार करते हुए पश्चिम की ओर जाना पड़ता था। तो दक्षिणी एशिया माइनर बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया और रोम के बीच अनाज व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था जो रोमन साम्राज्य में व्यापार का सबसे बड़ा रूप था। खैर, 21 श्लोक 3 और 7 में सोर का उल्लेख है। और दर्शक टायर के बारे में जो कुछ भी जानते थे, मेरा मतलब है कि वे शायद जानते थे कि इसे सिकंदर महान ने नष्ट कर दिया था। इस द्वीप साम्राज्य के लिए एक रैंप बनाया गया था और अब टायर ने मुख्य भूमि में कुछ जगह और फिर रैंप के नीचे द्वीप में ही शामिल कर लिया, लेकिन ल्यूक के दर्शकों ने चाहे जो भी सोचा हो, उन्हें कम से कम यह तो याद होगा कि ल्यूक ने पहले टायर का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए ल्यूक अध्याय 10 श्लोक 13 और 14 में निर्णय में सोर और सीदोन के लिए इन गैलीलियन कस्बों की तुलना में बेहतर होगा जो पश्चाताप नहीं कर रहे थे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां हम देखते हैं कि वास्तव में टायर में कुछ लोगों ने पश्चाताप किया है। वहां एक मजबूत और बढ़ता हुआ चर्च है। हमने पहले देखा था कि पौलुस ने अध्याय 15 में फीनिशिया की कलीसियाओं में बात की थी जिसमें यह भी शामिल होगा। अध्याय 27 में वह वास्तव में सिडोन के आसपास आतिथ्य प्राप्त करने जा रहा है जो फेनिशिया में भी है, और हम उस रेतीले समुद्र तट के बारे में जानते हैं जिसका वर्णन यहां इत्यादि किया गया है। प्राचीन काल में कांच बनाने के लिए उत्तम स्थान, लेकिन साथ ही टायर का उल्लेख अध्याय 12 श्लोक 20 में किया गया था क्योंकि उन्हें हेरोदेस ग्रिपर से परेशानी थी जो यहूदिया से उनकी कुछ खाद्य आपूर्ति में कटौती कर रहा था। लेकिन हमारे यहाँ जो है वह अलग है। हमारे यहाँ लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये अब मसीह में भाई बहन हैं। यह वास्तव में एक अच्छा संदेश देता है कि जातीय संघर्ष, जातीय प्रतिद्वंद्विता राज्य का विषय नहीं है। लेकिन जब हम भाई बहन हैं तो हम जहां भी जाते हैं हमें मसीह में भाई बहन मिलते हैं और हमें आतिथ्य और अनुग्रह की उम्मीद करने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में अध्याय 27 में सेंचुरियन जूलियस आश्चर्यचकित है। आम तौर पर एक सेंचुरियन को भोजन की मांग करनी पड़ती है। अच्छा, हमें खाना दो, मैं इतने सारे लोगों के साथ यात्रा कर रहा हूं, आपको खाना सौंपना होगा। उसे भोजन की मांग नहीं करनी पड़ी क्योंकि वे जहां भी गए पॉल के वहां पहले से ही दोस्त थे, वहां पहले से ही आस्तिक मौजूद थे और वे पौलुस का आतिथ्य सत्कार करके प्रसन्न हुए और वह कहते हैं, ठीक है, इस आदमी का इस आंदोलन में सम्मान किया जाता है और यह वास्तव में एक अच्छा आंदोलन है और यह बहुजातीय है। यह अन्य जातियों के प्रति यहूदियों का पूर्वाग्रह नहीं है जैसा मैंने यहूदिया में देखा था। यह किसी अन्य प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है। हम अधिनियमों में जो देखते हैं वही हमें वास्तव में होना चाहिए। अब यदि आप में से कुछ लोगों ने मेरे देश का दौरा किया है तो आप जानते हैं कि यह सबसे अधिक मेहमानवाज नहीं है क्योंकि प्रभुत्वशाली संस्कृति, हर कोई अपने आप में ही सिमटा हुआ है और वे हमेशा अपने बीच आने वाले दूसरों की जरूरतों को नहीं पहचानते हैं। लेकिन आपने आतिथ्य सत्कार का अनुभव किया हो या न किया हो, लेकिन संभवत आपको यहाँ और कुछ अन्य पश्चिमी संस्कृतियों में वैसा आतिथ्य अनुभव नहीं होगा जैसा कि कुछ संस्कृतियों में हुआ है जहाँ मैं एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में गया हूँ। लोग इतने मेहमानवाज, इतने दयालु रहे हैं। मैं वास्तव में कुछ लोगों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने भूख लगने पर मुझे खाना खिलाया। लेकिन किसी भी मामले में टॉलेमाइस, वे श्लोक 7 में वहां पहुंचे, टॉलेमाइस टायर से 30 मील या 48 किलोमीटर दूर था। हम ठीक से यह भी नहीं जानते कि उन्होंने वहां तक कैसे यात्रा की। वे जमीन से यात्रा कर सकते थे, यह सिर्फ 30 मील था। लेकिन किसी भी मामले में वह इन स्थानों पर विश्वासियों के साथ रहे, यानी आंदोलन फैल चुका था, अन्य जातियों के बीच आंदोलन फैल गया था। तो ल्यूक हमें यहां वहां कुछ अंश दे रहा है, लेकिन वह हमें पॉल के बारे में और अधिक विस्तार से जो कुछ देता है उसके अलावा वह उन चीजों के बारे में संकेत भी प्राप्त कर रहा है जिनका वर्णन नहीं किया गया है, कैसे अन्य लोग अपने साथ सुसमाचार ले जा रहे हैं। धार्मिक रूप से पॉल ने अधिनियम 15 में इस गैर यहूदी ईसाई आंदोलन की रक्षा करने में मदद की है, इसलिए पीटर एक महान नेता है और जेम्स उसके बचाव में आया जिसके लिए वह संघर्ष कर रहा था। लेकिन हम यहां भविष्यवाणियों के बारे में कुछ दिलचस्प भी देखने जा रहे हैं। अध्याय 21 और पद 4 में वे आत्मा के द्वारा पौलुस से कह रहे थे कि उसे यरूशलेम न जाना चाहिए, और फिर भी वह जानता था कि उसे यरूशलेम जाना चाहिए। कभी कभी तब भी जब लोग आत्मा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, तब भी जब लोग आम तौर पर सही होते हैं, कभी कभी आपको स्वयं जानने की आवश्यकता होती है क्योंकि कोई आपसे कहता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा आपसे कुछ करना चाहता है। वहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, कुछ स्कूल हैं जहाँ किसी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि आप हमारे स्कूल में आए और पढ़ाएं। और मुझे और मेरी पत्नी को उसे तौलना था और बहुत सावधानी से तौलना था। और मैं उनमें से कुछ स्कूलों में नहीं हूँ। दूसरी ओर उन स्थानों पर जहां भगवान ने मुझे वर्षों से लाया है, आम तौर पर उन्होंने पर्याप्त पुष्टि दी है। हालांकि जिस स्थान पर मैं अभी हूं, मेरी पत्नी ही वह थी जिसने सबसे पहले प्रभु से सुना था। मैंने नहीं सुना, मैं कुछ भी नहीं सुन रहा था, लेकिन मैंने कहा, ठीक है, आप जानते हैं कि अगर इसहाक ने रिबका की बात सुनी होती तो इससे उन्हें याकूब और एसाव के साथ बहुत परेशानी से बचाया जा सकता था, और इसलिए मुझे इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना था कि वह उस मामले में भगवान से सुन रही थी, आंशिक रूप से क्योंकि मुझे जहां मैं था उससे इतना प्यार था कि मेरे मन में आगे बढ़ने के प्रति पूर्वाग्रह था। लेकिन पुष्टियां बाद में सपनों में आई, बाद में नहीं, खैर वे मेरे स्थानांतरित होने से पहले आई, लेकिन उसके बाद मुझे पहले ही निर्णय लेना था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस बात की कई पुष्टियां हुई कि यह मेरे लिए सही जगह होगी, कम से कम मेरे जीवन के इस सीजन में। फिलिप की तरह आप जानते हैं, एक स्थायी प्रचारक और फिर वह कैसरिया में बस जाता है। हालांकि ये लोग आत्मा के माध्यम से बोल रहे थे, ल्यूक इसे स्पष्ट रूप से कहते हैं, वे झूठे भविष्यवक्ता नहीं थे, वे अपने कथन की विषय वस्तु में गलत नहीं थे। तो यह उस बात के साथ कैसे संतुलन बनाता है जो पॉल भगवान से सुन रहा था और पॉल इतना निश्चित था कि उसे ऐसा करना चाहिए था। खैर, ल्यूक 7:18-20 में जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में सोचें, जहां ल्यूक हमें बताता है कि जॉन ने यीशु के कार्यों के बारे में सुना था, सबसे हाल ही में नैन के बेटे की विधवा का पालन पोषण हुआ था। वह इन अद्भुत कार्यों के बारे में सुनता है और उन्हें यीशु के पास भेजता है और कहता है, क्या आप अपेक्षित हैं या हमें किसी और की तलाश करनी चाहिए? क्यों जब वह इन चमत्कारों के बारे में सुनता है? खैर, याद रखें कि जॉन ने प्रभु से क्या सुना था, वह पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देने जा रहा है। यीशु द्वारा किसी को आग में बपतिस्मा देने की कोई रिपोर्ट नहीं है, साम्राज्य अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यीशु ने यशाया 35:61 की भाषा में उसे उत्तर दिया, यह दिखाते हुए कि राज्य के कुछ मंत्रालय ये उपचार और इसी तरह और गरीबों को प्रचारित किया जाने वाला सुसमाचार ये एक पूर्व सूचकता है। मेरा मतलब है वे राज्य का हिस्सा हैं, और इसलिए राज्य का स्वाद पहले से ही मौजूद है। हो सकता है कि जॉन इसकी पूर्ति देखने के लिए जीवित न रहे, लेकिन बात यह है कि जॉन प्रभु के वचन का कुछ हिस्सा जानता था। लेकिन जैसा कि पॉल 1 कुरिन्थियों 13:9 में कहता है, हम आंशिक रूप से जानते हैं, हम आंशिक रूप से भविष्यवाणी करते हैं। यह हमारे शिक्षण को कवर करता है और यह हमारी भविष्यवाणी को कवर करता है। हम जो जानते हैं उसमें हम सही हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। हम केवल भाग ही जानते हैं। एलिशा के विषय में सोचो, जो 2 राजाओं 2 में एलिशा के निकट रहता है, और एक नगर में भविष्यद्वक्ता उसके पास आकर कहते हैं, क्या तू जानता है कि आज तेरा स्वामी तुझसे छीन लिया जाएगा? वह कहता है, मैं जानता हूँ, चुप रहो। वह दूसरे नगर को जाता है और वहाँ भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या तू जानता है कि आज तेरा स्वामी तुझसे छीन लिया जाएगा? और वह कहता है, मैं जानता हूँ, चुप रहो। और फिर एलियाह को आग के रथ में उसके पास से ले जाया गया, और उसके बाद भविष्यवक्ताओं के पुत्र एलिशा के पास आए। वे एलिशा पर एलियाह का सारा अभिषेक देखते हैं और कहते हैं, अच्छा, शायद यहोवा की आत्मा उसे किसी पहाड़ या किसी स्थान पर ले गई है, आइए उसके शरीर की तलाश करें। और एलिशा ऐसा है, मत देखो। और वे उससे आग्रह करते रहे और अंततः वह कहता है, आगे बढ़ो और देखो। और फिर वे देखते हैं और वे वापस आते हैं और कहते हैं, हम उसे नहीं ढूंढ सकते। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था न कि देखो मत। उनके पास उनकी तुलना में अधिक पूर्ण चित्र था। उन्होंने प्रभु से सुना, परंतु वे नहीं जानते थे कि एलियाह को कैसे ले जाया जाएगा। और हमारे साथ आमतौर पर ऐसा ही होता है। आप जानते हैं, मूसा से यही कहा गया है या मूसा के बारे में कहा गया है। गिनती अध्याय 12 में आप जानते हैं, मैं भविष्यवक्ता से एक दर्शन या स्वप्न में बात करूंगा। मैं इस तरह या उस तरह से बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ मूसा से आमने सामने बात करता हूं। हम आंशिक रूप से जानते हैं, हम आंशिक रूप से भविष्यवाणी करते हैं। किसी दिन हम वैसे ही जानेंगे जैसे हम जाने जाते हैं। किसी दिन आमने सामने मुलाकात होगी, लेकिन इस बीच हमें वह मिल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। और कभी कभी यह भ्रमित करने वाला हो सकता है, क्योंकि हमें यह टुकड़ा और यह टुकड़ा मिल रहा है, लेकिन हमें वह मिलता है जो हमें जानने की जरूरत है, हमें वह करने की जरूरत है जो हमें करने की जरूरत है। और इससे भी आगे हम अपने कदमों को व्यवस्थित करने के लिए ईश्वर पर भरोसा करते हैं। नए नियम में हमारे पास क्या है? हमारे पास अधिनियम 16 में क्या है, जहां पॉल को यह मार्गदर्शन मिल रहा है, यहां मत जाओ, यहां मत जाओ। वह यात्रा करता रहता है और अंततः उसे एक सपना मिलता है। वह कहता है, ठीक है, अभी यही चलेगा। हम सब कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन हम इतना समझते हैं कि यह जान सकें कि हमें अपनी बुलाहट को पूरा करने की आवश्यकता है। हमें इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अक्सर हमें रास्ते में और अधिक दिशाएं मिलेंगी। पॉल को चेतावनी दी जा रही है कि उसे क्या सामना करना पड़ेगा। वे परमेश्वर की चेतावनी सुनने के लिए सही थे कि वह मुसीबत का सामना करने वाला था। और वे प्रेम के द्वारा सही थे, जो आत्मा से भी आता है, आत्मा का फल है। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें इसका सामना करना पड़े। तो वे आत्मा के माध्यम से बोल रहे थे, लेकिन पॉल को इस बात की पूरी समझ थी कि उसे क्या करने के लिए बुलाया गया था। वे कैसरिया पहुंचते हैं, जो यहूदिया के तट पर है। यरूशलेमवासी इसे सदैव यहूदिया नहीं कहते थे। इसीलिए आप लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, कोई यहूदिया से वहां आ रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर यह यहूदिया की रोमन राजधानी थी। और वहां हमें फिलिप मिला और उन्होंने कुछ देर फिलिप के साथ विश्राम किया। फिलिप जिसके बारे में हमने प्रेरितों के काम अध्याय 8 में बहुत कुछ सीखा। संभवतः पॉल और फिलिप बहुत सी चीजों, पिछली बातों के बारे में बात कर रहे हैं। और ल्यूक वास्तव में ध्यान दे रहा है, और इन पिछली चीजों और जिस तरह की चीजों के बारे में आपने अधिनियम 8 में पढ़ा है, उस समय के बारे में बहुत कुछ सीख रहा है, जब शाऊल और फिलिप ओवरलैप हुए थे। हालांकि शाऊल एक अत्याचारी था। और फिलिप की चार बेटियां यहां श्लोक 9 में दिखाई देती हैं। और वे भविष्यवक्ताएं या ग्रीक कृदंत हैं, जिनका संभवतः अर्थ है, हालांकि ग्रीक क्रियाकाल इन दिनों वास्तव में उन्हें कैसे लिया जाए, इस पर बहुत बहस है, लेकिन शायद यह इंगित करता है कि वे नियमित रूप से भविष्यवाणी करते थे, जिसका मतलब है कि वे ल्यूक अध्याय 2 में अन्ना की तरह ही भविष्यवक्ता थे। ठीक है, जैसे आपके पास ल्यूक अध्याय 2 में शिमोन और अन्ना हैं, यहां आपके पास फिलिप की चार बेटियां हैं और अगबस एक वरिष्ठ स्तर के भविष्यवक्ता के रूप में दिखाई देने वाला है। याद रखें कि प्रेरितों के काम 2:17-18 में क्या कहा गया है, जहां तेरी स्त्रियां होंगी वहां तेरे बेटे बेटियां मेरे दासों नरनारियों पर भविष्यद्वाणी करेंगे, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। वह यह भी कहता है, तुम्हारे जवान स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। खैर, यहां हमारे पास युवा और बूढ़े हैं, हमारे पास दोनों लिंग हैं। मैं कहता हूं कि अकबस बूढ़ा था, वह शायद बूढ़ा था, कम से कम वह प्रेरितों के काम अध्याय 11 जो कि कई वर्ष पहले था से अधिक उम्र का था, तो कम से कम वह उनसे उम्र में बड़ा है। जब यह उनके कुंवारी होने की बात आती है तो निश्चित रूप से आप बहुत अधिक उम्र के हो सकते हैं और फिर भी कुंवारी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर प्राचीन काल में विशेष रूप से यहूदी संदर्भ में इसका क्या मतलब होता था, शायद ये उनकी युवा किशोरावस्था में होते हैं। उनकी उम्र 12 से 14 वर्ष या उसके आसपास हो सकती है। तो अगर कोई सोचता है कि भगवान युवा लोगों का उपयोग नहीं कर सकता है, तो यहाँ एक अनुच्छेद है जहाँ यह स्पष्ट है कि भगवान युवा लोगों का उपयोग करता है। और वे किस बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे? ठीक है, यह नहीं कहता है, लेकिन निस्संदेह वे इसमें शामिल हो गए, क्योंकि यह कहता है अगबस की भविष्यवाणी के बाद वहाँ हर कोई ल्यूक सहित हम सभी पॉल को यरूशलेम न जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। पुराने नियम के कई भविष्यवक्ताओं की तरह अगबुस भी सिर्फ बोलता नहीं है, वह इसे एक तरह से अपनी करधनी से क्रियान्वित करता है, शायद पॉल की करधनी से, और शब्दांकन बिल्कुल सटीक नहीं है, जैसे यहूदी पॉल को बिल्कुल नहीं सौंपते। यहूदियों ने वास्तव में पॉल को रोमनों को नहीं सौंपा, रोमनों को उसे यरूशलेम में यहूदियों से बचाना था, लेकिन यह काफी करीब है। पुराने नियम की कुछ भविष्यवाणियों में भी आपके पास इसी प्रकार की बात है, और आपके पास अधिनियमों की पुस्तक में अन्य लोग भी इसे इसी तरह से रखते हैं। मुझे लगता है कि यह उचित है कि यह यीशु को यहूदी अधिकारियों द्वारा पीलातुस को सौंपे जाने इत्यादि के साथ एक अच्छी समानता बनाता है। तो साहित्यिक दृष्टिकोण से लुकान स्तर पर यह बहुत दिलचस्प है, लेकिन एगाबस के स्तर पर भी आपके पास पुराने नियम की कुछ भविष्यवाणियां हैं जहां यह मूल जोर है। यह हमेशा विवरण नहीं होता है, हालांकि कभी कभी विवरण भी होता है। और फिर हमने यह सुना और हम सब कह रहे थे, पॉल कृपया यरूशलेम मत जाओ। जो लोग उनके साथ थे वे वास्तव में विभिन्न डायस्पोरा चर्चों के प्रतिनिधि थे, उनमें से अधिकतर शायद गैर यहूदी थे जो इस संग्रह को डायस्पोरा चर्चों से यरूशलेम ला रहे थे। हम इसे पॉल के पत्रों से जानते हैं जहां वह अधिनियमों में इसके बारे में अधिक विस्तार से बात करता है। आपने इसके बारे में अभी प्रेरितों के काम 24:17 में सुना है और बस पारित हो गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ल्यूक के समय तक यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। मैं अगबस के भविष्य सूचक व्यवहार के बारे में और अधिक कह सकता हूँ। जैसे जैसे आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, आप भविष्यवक्ताओं की प्रकृति इत्यादि के बारे में बहुत कुछ देखेंगे। मुझे बस उसके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन पुराने नियम से एक अंतर है। ओल्ड टेस्टामेंट कोल अमर अडोनाई, इस प्रकार भगवान कहते हैं, ग्रीक में यह टैडलेज होगा, इस प्रकार कहते हैं, ठीक है, यहाँ यह टैडलेज है, ऐसा कहता है, लेकिन यह भगवान नहीं कहता है, यह भगवान नहीं कहते, यह कहता है पवित्र आत्मा ऐसा कहता है, पवित्र आत्मा यही कहता है। आपके पास वह प्रकाशित वाक्य में भी है टैडलेज, और फिर यह यीशु का विभिन्न तरीकों से वर्णन किया गया है, और फिर पैराग्राफ के अंत में यह कहता है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो वह पवित्र आत्मा के लिए बोल रहा है। यह समझा जाता है कि आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है, और यह उस बात से मेल खाता है जो हमने देखा है कि हर शहर में आत्मा गवाही दे रही है कि पॉल पीड़ित होने वाला है। वह अपने रास्ते चला जाता है। वे मनसिन एक पुराने शिष्य एक शिष्य के साथ यात्रा कर रहे हैं जो लंबे समय से आसपास रहा है। और वे यरूशलेम पहुंचे। अब यह अच्छा है कि उनके साथ कोई जा रहा है, क्योंकि अब हमारे पास अन्य जातियों का एक समूह है। और गलील का आंतरिक भाग और भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन कैसरिया, आपके पास एक मिश्रित चर्च है। आपके पास यहूदी और अन्य जाति विश्वासी हैं। कम से कम कुर्नेलियुस तक, शायद फिलिप के मंत्रालय से कुछ आगे तक, हम नहीं जानते, क्योंकि इसमें पहले से ही उल्लेख किया गया है कि वह एक गैर यहूदी तक पहुंच गया था, और ल्यूक को अब और उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते में तटीय मार्ग के किनारे ऐसे और भी शहर होंगे जहां यहूदी और अन्य जाति दोनों होंगे, लेकिन यरूशलेम में यह मुख्य रूप से यहूदी होगा। इसलिए मनासिन में आवास प्राप्त करना बहुत अच्छा है। फिलिप के साथ आवास प्राप्त करना बहुत अच्छा है। यरूशलेम में आवास प्राप्त करना वास्तव में एक संदेश भेजता है कि वहां ऐसे विश्वासी हैं जो अधिनियम 15 में पहले से ही किए गए समझौतों के आधार पर अन्य जातियों के विश्वासियों की मेजबानी करने के इच्छुक हैं। हालांकि हम देखेंगे कि हर कोई इससे सहमत नहीं है, और पॉल यहूदी और गैर यहूदी विश्वासियों के बीच और यहूदी चर्च और प्रवासी चर्चों के बीच मतभेदों को दूर करना चाहता है। तो पॉल आता है। ल्यूक इसका वर्णन नहीं करता है, लेकिन वह संग्रह प्रस्तुत करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जेरूसलम चर्च ने वास्तव में संग्रह को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन प्राचीन काल में किसी उपहार को अस्वीकार करना शत्रुता की घोषणा करना था। वह बहुत गंभीर कृत्य था, और यह बहुत कम संभावना है कि यरूशलेम चर्च के नेता पॉल के खिलाफ शत्रुता की घोषणा करना चाहेंगे। वे कहते हैं, ठीक है, वे उसके परीक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं। खैर, पहली सुनवाई में उन्हें ऐसा करने के लिए संगठित नहीं किया गया होगा, और आपको यह समझना होगा कि वे काफी दबाव में भी थे। मेरा मतलब है, पॉल के कैसरिया छोड़ने के तुरंत बाद, या शायद उसके कैसरिया छोड़ने से पहले भी, लेकिन शायद पॉल के कैसरिया से रोम के लिए निकलने के तुरंत बाद। नहीं, यह पॉल के कैसरिया से रोम जाने के बाद की बात है। मुझे खेद है, क्योंकि यह फेस्तुस की मृत्यु के बाद की बात है। इसलिए पॉल के जाने के कुछ वर्षों के भीतर जेम्स, यीशु का भाई, जो यरूशलेम चर्च का नेता है, जो यरूशलेम में बहुत सम्मानित है, एक महायाजक द्वारा शहीद हो जाता है। इसलिए उन पर भी काफी दबाव था। इसके अलावा हम नहीं जानते कि उन्होंने पॉल की ओर से बात नहीं की। हम नहीं जानते कि उन्होंने उसकी ओर से पत्र क्यों नहीं भेजे। हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे ल्यूक को हमें बताने की आवश्यकता है, क्योंकि वह पहले ही हमें अध्याय 21 में बता चुका है कि जेम्स और बड़ों का अनुकूल स्वागत करता है। तो किसी भी मामले में हम अध्याय 21 श्लोक 20 से 26 में सुलह के प्रयासों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम रोमियो 15 से जानते हैं कि पॉल की यरूशलेम की यात्रा सुलह का एक मिशन होने वाली थी। ठीक है, जेम्स और बुजुर्गों ने हमारा स्वागत किया, ल्यूक कहते हैं, ल्यूक वहां थे और उन्होंने हमारा आतिथ्य सत्कार किया। आप जानते हैं, हमने उनका स्वागत किया और उन्होंने हमारा सत्कार पूर्वक स्वागत किया। श्लोक 20 में जेम्स उन्हें समझा रहा है, ठीक है, हमारे पास यहूदिया में असंख्य हजारों विश्वासी हैं, जिसका अर्थ है कि अब तक उनकी संख्या फरीसियों से कहीं अधिक है, जिनकी जोसेफस ने अनुमान लगाया था कि उनकी संख्या लगभग 6,000 है। तो बस विश्वासियों की भारी संख्या। वे यीशु से प्रेम करते हैं, वे कानून के प्रति भी उत्साही हैं। यह उनकी संस्कृति के भीतर एक अच्छा साक्ष्य था, और आखिरकार कानून ईश्वर द्वारा दिया गया था, यह धर्म ग्रंथ था, भले ही यह सभी स्थितियों या सभी समयों या सभी लोगों के लिए या आवश्यक रूप से देश के बाहर काम करने के लिए नहीं था। मैं इसके बारे में कुछ और समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ ल्यूकेट्स के भीतर रहने के लिए बस इतना कहना है, आप जानते हैं, कानून के प्रति धर्मप्रायणता कोई बुरी बात नहीं है। यीशु के माता पिता को इस तरह चित्रित किया गया है। खैर, जोसेफ और मैरी को इस तरह चित्रित किया गया है। और ल्यूक अध्याय 2 कानून के प्रति पवित्र होने के बारे में है। आपके पास अरिंथिया के जोसेफ को इस तरह चित्रित किया गया है। जब पॉल प्रेरितों के काम अध्याय 22 में बोल रहा है और समुदाय के साथ अपने अनुभव की एकजुटता पर जोर दे रहा है, तो आपके पास अनन्या को इस तरह से चित्रित किया जाने वाला है। समुदाय के साथ संदर्भ बनाने और उसकी पहचान करने में कुछ भी गलत नहीं था, और परमेश्वर के नियम का पालन करने में कुछ भी गलत नहीं था। यह सिर्फ इतना है कि अन्य जातियों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन किसी भी मामले में हजारों लोग कानून के प्रति उत्साही हैं। खैर, लगभग 10 या 15 साल पहले से, अग्रिप्पा प्रथम के समय से, यहूदी राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। हम इसे जोसेफस में भी देखते हैं। इससे रोम के साथ तनाव बढ़ रहा था। इसके अलावा इस प्रांत में भेजे गए रोमन गवर्नरों के कुप्रशासन के कारण अधिक तनाव पैदा हो रहा था। यह सीरियाई प्रांत का यह हिस्सा नहीं था, इसे भेजे जाने के लिए आदर्श स्थान नहीं माना गया था। और ऐसा भी नहीं था, आप जानते हैं, लोगों ने कहा था कि इन लोगों के साथ मिलना मुश्किल है। वहां बहुत सारे सांस्कृतिक संघर्ष थे और जो लोग वहां राज्यपाल थे वे राजनीतिक कारणों से वहां राज्यपाल थे इत्यादि। और हम कुछ ही क्षणों में इस बारे में और अधिक देखेंगे कि फेलिक्स वहां क्यों है। लेकिन पॉल के बारे में अफवाहें थीं कि जेम्स ने उल्लेख किया है या जकोबस ने उल्लेख किया है। जैकब ने 21:21 में उल्लेख किया है। और पॉल के बारे में ये अफवाहें हैं कि वह प्रवासी भारतीयों में यहूदी लोगों को कानून का पालन न करने की शिक्षा दे रहा है। खैर, पॉल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 9:19-23 को याद रखें। पॉल सभी लोगों के लिए सब कुछ बन जाता है, कानून के अधीन उनके लिए जो कानून के अधीन हैं। वह यहूदी से यहूदी बन जाता है जो उसके लिए आसान होता, यूनानी से यूनानी। पॉल लोगों के अपने रीति रिवाज रखने के खिलाफ नहीं है। वह उन रीति रिवाजों को दूसरों पर थोपने के खिलाफ हैं। और जेम्स कहते हैं, आप जानते हैं, हम पहले ही इस पर सहमत हो चुके हैं। हम उस पर सहमत हुए। लेकिन आप जानते हैं, ऐसे लोग भी थे जिन्हें पॉल जो कर रहा था वह पसंद नहीं आया, और इसलिए उन्होंने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। आज आपके पास ऐसे लोग हैं जो ऐसी गपशप करते हैं। आशा है आप में से किसी ने भी ऐसा कभी नहीं किया होगा। लेकिन किसी की स्थिति लेना और इसे बेतुके तक कम करना या इसे उन तरीकों से विस्तारित करना जो उन्होंने वास्तव में नहीं कहा है, आपको लगता है कि उनका यही मतलब है या यह वह जगह है जहां यह जा सकता है? कभी कभी यह उस ओर जा सकता है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा न हो, लेकिन उनके साथ बात करना अच्छा है। किसी भी स्थिति में, जब सीजर रोम में नहीं था, तो उसके दुश्मनों और रोम में उसके प्रतिद्वंद्वियों ने उसके बारे में अफवाहें फैलाईं, गंदी अफवाहें। जब पौलुस यरूशलेम में नहीं था, तो उसके शत्रुओं ने उसके विषय में अफवाह फैला दी। और हम इसे पॉल के लेखन रोमियो 3:8 में भी देखते हैं, जो लोग कहते हैं, हम अच्छा करें ताकि बुराई न हो, पॉल कुछ इसी तरह की शिक्षा दे रहे हैं। या 2 कुरिन्थियों 6:8, आप जानते हैं, अच्छी रिपोर्ट और बुरी रिपोर्ट से। कुछ लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं। खैर, जिस तरह से पॉल को यह दिखाने के लिए कहा गया है कि वह टोरा रखने वाले यहूदी लोगों के खिलाफ नहीं है, वह यह है कि उसे कुछ नाजरी लोगों का समर्थन करने के लिए कहा गया है जो एक मन्नत के तहत हैं, जिसका मतलब है कि पॉल मंदिर में जाएगा। वह बलिदान के लिए भुगतान करने जा रहा है और पॉल को इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह यहूदी लोगों द्वारा यहूदी रीति रिवाज रखने के खिलाफ नहीं है। वह सिर्फ यहूदी रीति रिवाजों को दूसरों पर थोपने के खिलाफ है। उसी तरह जैसे कोई मिशनरी जा सकता है, मान लीजिए यदि आप फ्रांस या रूस से होते, या आइए मुझे एक के बारे में सोचने दीजिए, मान लीजिए कि आप चीन से एक मिशनरी हैं और आप जिम्बाब्वे में मंत्री हैं और आप जानते हैं आप चले गए हैं एक व्यवसायी व्यक्ति के रूप में, लेकिन आप एक मिशनरी हैं। आप जिम्बाब्वे में लोगों पर चीनी रीति रिवाज नहीं थोपना चाहते, आप उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां वे हैं। लेकिन जब आप चीन वापस जाते हैं तो आप चीन में अपने लोगों पर स्थानीय शोना रीति रिवाज या अन्य जिम्बाब्वे रीति रिवाजों को लागू करने का प्रयास नहीं करेंगे। यह ऐसा है जैसे भगवान सांस्कृतिक संदर्भ में लोगों के साथ काम करता है। हमारे पास सांस्कृतिक संदर्भ हैं, इसलिए पॉल अपने लोगों के साथ पहचान बनाता है। उन्हें यह बलिदान देने में कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर अभी भी खड़ा है, इस पर निर्णय हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन यहां हमारे यहां दंगा है। एशिया से कुछ यहूदी ऐसा कहते हैं, खैर एशिया का अग्रणी शहर एशिया के रोमन प्रांत इफिसस में था। याद रखें अध्याय 19 श्लोक 8 और 9 में पॉल ने उनके आराधनालय को विभाजित कर दिया था, और इसलिए उन्होंने पॉल पर यूनानियों को मंदिर में लाने का आरोप लगाया और इस बारे में चिल्लाना शुरू कर दिया। अब उनके आरोप का एक आधार तो था, लेकिन इस मामले में यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने पॉल के समूह के हिस्से के रूप में ट्रोफिमस, एक इफिसियन गैर यहूदी को पहचान लिया था। वह पॉल के साथ आया था और उन्होंने कहा, ओह यह एक अन्य जाति है, और उन्होंने पॉल को उसके साथ शहर में देखा था। खैर अब पॉल मंदिर में है, और इसलिए उन्होंने मान लिया कि पॉल ट्रोफिमस को मंदिर में ले गया। ल्यूक ने इसे झूठा आरोप बताया। पॉल ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि कभी कभी लोग सीमित साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालते हैं, और इस मामले में भी यही किया गया। उन्होंने पॉलुस पर त्रुफिमुस को मंदिर में ले जाने का दोष लगाया, और जिन लोगों ने उन्हें सुना उन्होंने उत्तर दिया। यही कारण है कि आरोप लगाने वाले बाद में किसी भी मुकदमे में उपस्थित नहीं होते। एक बात के लिए वे इफिसुस वापस चले गए, लेकिन एक और बात के लिए उनके लिए यह भी अच्छा नहीं होगा कि वे नोटरीकृत दस्तावेजों को छोड़ दें जो उन्होंने देखा, क्योंकि वहां बहुत सारे गवाह होंगे अन्यथा ट्रोफिमस वहां के बजाय कहीं और था। खैर बाद में इफिसुस क्षेत्र के चर्च को समझ आएगा कि पॉल ने उन्हें रोमन हिरासत से क्यों लिखा था, क्योंकि पॉल इस बिंदु पर मुसीबत में पड़ने वाला था। ट्रोफिमस इफिसुस का रहने वाला था, अभियोक्ता इफिसुस से थे। हम बस इफिसुस वापस जा रहे हैं, पॉल क्यों परेशानी में है? वे उतनी ही अपेक्षा कर सकते थे, क्योंकि पॉल ने पहले ही रोमियो 15:31 में भी परेशानी की उम्मीद के बारे में बात की थी। वह यहूदिया पहुंचने पर कुछ परेशानी की उम्मीद कर रहा है। खैर इस बिंदु पर मैं विषयांतर करना चाहता हूं और पॉल की शिक्षाओं के बारे में मसीह में एक नए मंदिर के निर्माण के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। संभवतः इस तरह की शिक्षाओं के कारण इफिसुस में विश्वासियों और इफिसुस में पॉल के दुश्मनों को पहले से ही पता था कि वह एक बड़े मंदिर की तलाश में था। लेकिन फिर ऐसा करने में पॉल कई अन्य यहूदी लोगों से भिन्न नहीं था जिन्होंने एक नए मंदिर के आने की बात की थी। मेरा मतलब है यहाँ नियमित प्रार्थना भी होती थी, भगवान से मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रार्थना करना, शायद मंदिर के नष्ट होने से पहले भगवान से कुछ बड़ा करने की उम्मीद करना। पहले हनोक मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में बात करता है। कुमरान समुदाय, वे एक नए मंदिर की तलाश में थे। उन्होंने माना कि पुराने मंदिर को एक भ्रष्ट वरिष्ठ पुजारी ने अपवित्र कर दिया था। किसी भी स्थिति में पॉल इफिसियों को लिखे एक पत्र में इस बारे में और अधिक बात करने जा रहा है। सिर्फ इफिसस ही नहीं, बल्कि फिर से शायद एक गोलाकार पत्र जिसमें इफिसस प्रमुख स्थान है। तो एशिया माइनर में परिपत्र पत्र। लेकिन पॉल इफिसियों अध्याय 2 श्लोक 11 से 22 में मसीह में एक नए मंदिर के निर्माण के बारे में बात करता है। यह परिच्छेद अन्य जातियों का परमेश्वर के लोगों में स्वागत करने पर जोर देता है, जो पॉल के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा मतलब है, रोमनों में वह इस बात पर जोर देता है कि कैसे यहूदी और अन्य जाति एक ही संदर्भ में एक साथ आते हैं। गलातियों के अध्याय 2 में वह पीटर को सार्वजनिक रूप से चुनौती देता है कि मेरे सांस्कृतिक संदर्भ में हम शायद एक अलग लंच काउंटर कह सकते हैं। यहूदी और अन्य जाति अलग अलग खाते हैं। पॉल ने चुनौती दी कि यह सुसमाचार के विपरीत है, सुसमाचार के प्रतिकूल है। और यीशु ने यहूदी और सामरी पवित्र स्थलों से बेहतर एक नए मंदिर की भी बात कही थी। जॉन अध्याय 4 में उन्होंने पुराने मंदिर पर फैसले के बारे में बात की। उन्होंने एक नए पवित्र स्थान की आधारशिला होने आदि के बारे में बात की। वास्तव में मार्क अध्याय 11 में मंदिर पर निर्णय का एक कारण यह प्रतीत होता है, जैसा कि आप जानते हैं, यह घर सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर होना था। ल्यूक ने सभी राष्ट्रों को छोड़ दिया क्योंकि वह शायद निर्णय के बारे में दूसरे भाग पर जोर दे रहा है। लेकिन किसी भी मामले में पुराने नियम के मंदिर ने अन्य जातियों को यहूदियों से अलग नहीं किया। अंतरतम न्यायालय केवल भगवान के लिए था। अगला स्थान पुजारियों के लिए था, लेकिन तब उसके बाहर कोई विभाजन नहीं था। उसके बाहर बाहरी दरबार था। बाहरी प्रांगण में सभी का स्वागत था। एक राजा अध्याय 8 में सुलेमान अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करता है कि वे उस बाहरी दरबार में इसराइलियों के समान स्वागत महसूस करें। लेकिन पुजारियों द्वारा विकसित किए गए पवित्रता नियमों के कारण हेरोदेस के मंदिर ने यहूदियों को अन्य जातियों से अलग कर दिया। बाहरी अदालत को अब यहूदी पुरुषों के लिए इसराइल की अदालत में विभाजित किया गया था और उसके बाहर निचले स्तर पर यहूदी महिलाओं के लिए महिलाओं की अदालत में विभाजित किया गया था, जिन्हें यहूदी पुरुषों की तुलना में कम स्वच्छ माना जाता था। और उसके बाहर एक निचले स्तर पर नया बाहरी दरबार था जिसके आगे अन्य जाति नहीं जा सकते थे। अच्छे स्वागत चिन्हों ने अन्य जातियों को सूचित किया कि यदि वे इस बिंदु से आगे बढ़े तो वे अपनी मृत्यु के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, जो शीघ्र ही होने वाली है। जोसेफस ने उन चिन्हों का उल्लेख किया है। वे भी मिल गए हैं। एक बहुत समय पहले कुछ पुरातत्वविदों को मंदिर क्षेत्र में मिला था। इसलिए प्रेरितों के काम 21 में कुछ इफिसियाई यहूदियों ने पॉल को मंदिर से बाहर निकलते देखा। उन्हें याद है, ठीक है, उसने हमारे आराधनालय को विभाजित कर दिया। वह इफिसुस में एक दंगे का भी अवसर था जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। अब उन्होंने उसे यरूशलेम में ट्रोफिमुस नामक एक इफिसियाई अन्य जाति के साथ देखा है। इसलिए उन्होंने दंगा शुरू कर दिया। पॉल ने नहीं, बल्कि उसके आरोपियों ने दंगा शुरू कर दिया और पॉल पर आरोप लगाया कि वह इस अन्य जाति को मंदिर में विभाजनकारी दीवार के पार ले आया है। और पॉल, ठीक है, पॉल को पीटा जा रहा है। और रोमन किला एंटोनिया वहां टेंपल माउंट पर था। इसने अन्य जातियों के दरबार की अनदेखी की। इसलिए उनके संतरी हमेशा निगरानी में रहते हैं, खासकर इस अवधि में, क्योंकि फेलिक्स एक भयानक प्रशासक था। उनके समय में हर तरह की हत्याएं हो रही थीं। इसलिए वे देखते हैं कि क्या हो रहा है और सैनिक नीचे भाग जाते हैं। यह कहता है कि शतपति भाग जाते हैं। हमें नहीं पता कि उस समय सभी सैनिक नीचे भागने के लिए तैयार थे या नहीं, लेकिन दो अधिकारी अपने साथ बहुत सारे सैनिक ले जाते हैं और वे पॉल को बचा लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वे उसे बचा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी को पकड़ लिया है। और पॉल को पीटने वाले यहूदी वास्तव में हैं, उन्होंने इन हत्यारों में से एक को पकड़ लिया है, जिसे वास्तव में क्रांतिकारियों के अलावा कोई भी पसंद नहीं करता है। खैर, पॉल उन्हें उपदेश देने के लिए कहता है। पिटाई के बाद शायद वह इस समय स्वस्थ अवस्था में नहीं है, लेकिन जब मुझे पीटा जा रहा था तब मैंने उपदेश देना जारी रखा। परंतु पौलुस ने उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने अरामी भाषा में उपदेश दिया। उन्हें भरपूर साझी सांस्कृतिक जमीन मिली। उन्होंने यीशु के बारे में उसकी गवाही को अच्छे से सुना। चीजें अब वैसी नहीं रहीं जैसी वे प्रेरितों के काम अध्याय दो में थीं। पॉल पेंटेकोस्ट के समय पर वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए यह कुछ हद तक पॉल के पेंटेकोस्ट उपदेश जैसा है, शायद पेंटेकोस्ट के ठीक दिन पर नहीं, प्रेरितों के काम दो की तरह, या पेंटेकोस्ट के सटीक पर्व पर नहीं। लेकिन किसी भी मामले में यह पॉल के पेंटेकोस्ट उपदेश के बराबर है, और लोग अब यीशु के बारे में सुनने के लिए अधिक खुले हैं। मेरा मतलब है, आपके पास यह स्वदेशी चर्च है, यीशु में विश्वासियों का यह विशाल आंदोलन है जो अपने कई साथियों द्वारा प्रसिद्ध और पसंद किया जाता है। वे कानून रखते हैं, इस कारण फरीसी उनकी सराहना करते हैं। लेकिन पॉल द्वारा यह सब सामान्य आधार देने के बावजूद पॉल केवल यीशु का प्रचार करना समाप्त नहीं करता है। पौलुस कहता है, और यहोवा ने मुझे इस स्थान से यह कहकर भेजा कि अन्य जातियों के पास जाओ। खैर, यह उनमें से कुछ के संदेह की पुष्टि करता है कि इस आदमी का अन्य जातियों से कुछ लेना देना है, या हो सकता है कि वह किसी अन्य जाति को अपने साथ मंदिर में भी ले गया हो। अब अरामी भाषा में बोलने के बारे में अच्छी बात यह है कि उस पर इफिसियन यहूदी आरोप लगाने वाले केवल ग्रीक जानते होंगे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कह रहा था। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि सी हिलियार्क, रोमन ट्रिब्यून का प्रभारी जो था, उसे भी समझ नहीं आया कि वह क्या बोल रहा था, और यह भी नहीं जानता था कि वह वास्तव में सुलह, जातीय सुलह की ओर इशारा कर रहा था। उन्हें लगता है कि वह दंगा भड़का रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, पॉल अन्य जातियों के लिए अपना आह्वान नहीं छोड़ता। क्यों? यह इतना विवादास्पद क्यों था? सटीक रूप से क्योंकि इस बिंदु पर चीजें बहुत ध्रुवीकृत थीं। यह यहूदी रोमन युद्ध शुरू होने से कुछ ही साल पहले की बात है, क्योंकि रोम हाल के वर्षों में यहूदिया के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, और क्योंकि राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, लोग अधिक से अधिक ध्रुवीकृत हो रहे हैं। और जब वे ध्रुवीकृत हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं? प्रत्येक के नेता, यदि वे प्रभारी बने रहना चाहते हैं, वे लोकप्रिय बने रहना चाहते हैं, वे अपना पक्ष वही बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और समय के साथ वे अधिक से अधिक ध्रुवीकृत हो जाते हैं। आप इसे समाजशास्त्रीय रूप से राजनीति में और अन्यत्र विभिन्न स्थानों पर देख सकते हैं। किसी भी स्थिति में, लेकिन पॉल इसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पॉल के लिए यदि आप वास्तव में यीशु के प्रेमी हैं तो आपको अपने भाई और बहन से प्यार करना होगा जो मसीह में हैं। यदि आप जातीय आधार पर प्रेम नहीं कर सकते तो अपने आप को यीशु का प्रेमी न कहें। हमें जातीय आधार पर प्रेम करने में सक्षम होना होगा। और यदि आपके पास जातीय रेखा के दूसरी ओर बहुत सारे विश्वासी नहीं हैं, तो आइए कुछ जीतना शुरू करें। आइए उनके साथ मसीह के प्रेम को साझा करना शुरू करें। इसलिए दंगा फिर से शुरू हो गया और पॉल रोमन हिरासत में आ गया। और इसलिए जब पॉल इफिसियों और इफिसुस के आसपास के क्षेत्र को लिखता है तो वह संभवतः रोमन हिरासत से लिखता है। खैर, वह रोमन हिरासत से लिखता है, संभवतः रोम से। उन्हें कैसरिया में 2 साल तक रखा गया, फिर रोम स्थानांतरित कर दिया गया। इफिसुस के विश्वासियों को पता होगा कि पॉल रोमन हिरासत में क्यों था। त्रोफिमुस इफिसुस का रहने वाला था। पॉल पर आरोप लगाने वाले, जो निस्संदेह इफिसुस में भी उसके खिलाफ बोलने में प्रसन्न होंगे, इफिसुस से ही थे। इसलिए वे जानते थे कि पौलुस रोमन हिरासत से उन्हें क्यों लिख रहा था, और इसीलिए पॉल और उसके पहले श्रोताओं के लिए मंदिर में इस विभाजनकारी दीवार से बड़ा यहूदी और अन्य जातियों के बीच विभाजन का कोई प्रतीक नहीं हो सकता था। और इसीलिए इफिसियों के अध्याय 2 में पॉल घोषणा करता है कि विभाजन की इस विभाजनकारी दीवार को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। इफिसियों 2:14, वह स्वयं हमारी शांति है, शायद मीका की भाषा को प्रतिध्वनित कर रहा है। वह स्वयं हमारी शांति है, जिसने संदर्भ में यहूदी और गैर यहूदी दोनों को एक बना दिया है और शत्रुता की विभाजनकारी दीवार को नष्ट कर दिया है। वह आगे कहते हैं कि यह पवित्रता नियमों पर आधारित था, जो इसे विभाजित करता है। दीवार पुजारियों द्वारा बनाई गई थी। अब यह उस समय की बात है जब यह जातीय सुलह पर चर्चा करने के लिए सभी हलकों में लोकप्रिय था। पॉल गलातियों 3:28 में ऐसी बातें घोषित करते हुए इधर उधर भाग रहा है, जैसे मसीह यीशु में न तो यहूदी है और न ही अन्य जाति। उनका अभिप्राय सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं था, बल्कि ईश्वर के सामने हम सभी एक ही तरह से ईश्वर के पास आते हैं। कुछ साल बाद, उसके कैसरिया छोड़ने के कुछ ही साल बाद, यहूदी और सीरियाई कैसरिया की सड़कों पर एक दूसरे का नरसंहार कर रहे थे। जोसीफस हमें बताता है कि 1 घंटे में बहुत जल्दी कैसरिया में 18,000 यहूदियों की हत्या कर दी गई। फिलिप्पुस और उनकी 4 बेटियां, हमने सुना है कि वे और यीशु में विश्वास करने वाले कई अन्य यहूदी चले गए थे और वे इफिसस के आसपास के क्षेत्र में बस गए थे। 1 दशक बाद, जब पॉल यह लिख रहा था, उसके 1 दशक के भीतर रोम ने यरूशलेम के मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके बचे लोगों को गुलाम बना लिया। हालांकि इफिसियों 2 में पॉल एक नए मंदिर की बात करता है। उसमें पूरी इमारत एक साथ जुड़ जाती है और भगवान में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, और उसमें तुम भी एक निवास स्थान बनने के लिए एक साथ बनाए जाते हो, जिसमें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वास करता है। खैर, प्रेरितों के काम अध्याय 21 पर वापस आते हुए पॉल को मंदिर के बाहरी प्रांगण में खींच लिया जाता है और द्वार बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? वे उसके खून से मंदिर को अपवित्र होने से बचाना चाहते हैं। वे उसे मार डालना चाहते हैं। वे उसे पीट पीट कर मार डालना चाहते हैं, लेकिन वे मंदिर को अपवित्र नहीं करना चाहते। आपको मंदिर में लोगों को नहीं मारना चाहिए, जो वास्तव में एक अभयारण्य शरण का स्थान माना जाता है। उसे पीटना ठीक है, और शायद लेवी रक्षक भी इसमें भाग लेना चाहते हैं। रोम द्वारा यहूदिया में दी गई एक स्वचालित मृत्युदंड यह थी कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर की पवित्रता का उल्लंघन करता है, तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पॉल मंदिर में जाने वाला अन्य जाति नहीं था। वह यहूदी था, लेकिन उस पर गैर यहूदी को ले जाने का आरोप लगाया गया, लेकिन गैर यहूदी कहीं नहीं मिला। विडंबना यह है कि रोम के सैनिकों ने अनजाने में पॉल को बचा लिया, जिसका श्रेय बाद में ट्रिब्यून को लेने में खुशी हुई, लेकिन वह नहीं जानता था कि उस समय वह क्या कर रहा था। लेकिन वे अनजाने में पॉल को बचा लेते हैं। हमने उल्लेख किया कि कैसे एंटोनिया किले ने बाहरी आंगन की अनदेखी की। पुरातत्व और जोसेफस हमें दिखाते हैं कि एंटोनिया किले से नीचे बाहरी प्रांगण तक जाने के लिए सीढ़ियां थीं। और इसलिए जब इसमें सीढ़ियों से नीचे भागने वाले सैनिकों का उल्लेख होता है तो यह एक बहुत चौड़ी सीढ़ी थी। आपको एकल फाइल को चलाने की जरूरत नहीं थी। और यहां भीड़ भ्रमित थी, ठीक वैसे ही जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 19 में भीड़ थी। भीड़ के पास वास्तव में सारी जानकारी प्राप्त करने का समय नहीं था। इसीलिए जब ट्रिब्यून यह पता लगाना चाहता है कि पॉल ने वास्तव में क्या किया है, क्योंकि वह नहीं जानता है, तो उसने भीड़ से अलग अलग बातें सुनी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पॉल मिस्र का वह झूठा भविष्यवक्ता है जिसके बारे में जोसेफस बात करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वह शिकारी हत्यारों में से एक है जिसके बारे में जोसेफस भी बात करता है। शिकारी ने जो किया वह यह था कि उन्हें शिकारी कहा जाता था क्योंकि वे खंजर रखते थे, इस विशेष प्रकार के खंजर के लिए एक लैटिन शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने उन्हें अपने लबादे के नीचे रखा। और वे मंदिर में जाएंगे, गुप्त रूप से नहीं। वे सार्वजनिक रूप से तब जाते थे जब बहुत भीड़ होती थी। और वे मंदिर में कुछ अभिजात वर्ग के लोगों के लिए अपने तरीके से काम करेंगे क्योंकि वे जानते थे कि अभिजात वर्ग रोम के साथ लीग में थे, कम से कम पुराने अभिजात वर्ग तो थे। और वे लबादे के नीचे से खंजर निकाल लेते, खंजर को रईस के हाथ में छोड़ देते और चिल्लाने लगते, अरे नहीं, देखो क्या हुआ। और किसी को पता नहीं चलेगा कि यह किसने किया, इसलिए नहीं कि वहां भीड़ नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वहां इतनी भीड़ थी, किसी को नहीं पता था कि किसने उसमें खंजर घोंप दिया। और इसलिए वह सोच रहा है, अच्छा, शायद इन हत्यारों में से एक को पकड़ लिया गया है। या यदि यह मिस्र का झूठा भविष्यवक्ता है जो भाग गया, तो हम भीड़ को तितर बितर कर देते हैं। लेकिन अगर यह भविष्यवक्ता है तो वह जानता है कि यह उसके करियर के लिए अच्छा होगा। तो किसी भी स्थिति में पॉल के भाषण देने से पहले वह पॉल के साथ बात कर रहे हैं और वह कहता है, ओह, आप ग्रीक जानते हैं, तो आप वह मिस्र के भविष्यवक्ता नहीं हैं जो कुछ समय पहले लोगों को जंगल में ले गया था। मिस्र के यहूदी यूनानी भाषा बोलते थे, लेकिन यह अच्छी यूनानी भाषा नहीं थी, उस तरह की यूनानी भाषा जो उत्तरी भूमध्य सागर के यूनानी लोग आमतौर पर बोलते थे। आप पेरिसियन फ्रेंच के बारे में सोच सकते हैं। मेरी पत्नी जब वह फ्रांस में अपनी मास्टर और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही थी तो वह एकदम पेरिसियन फ्रेंच बोलती थी। कांगोलेस फ्रेंच फ्रेंच है, लेकिन वह परफेक्ट पेरिसियन फ्रेंच बोलती थी, जिसका पेरिस में सबसे अधिक सम्मान किया जाता था। तो आप जानते हैं कि वहां कुछ लोग थे, जब वह स्कूल जाती थी तो खुद को सहारा देने के लिए एक अस्थायी नौकरी के लिए फोन करती थी और वे कहेंगे, अरे हाँ, काम के लिए आओ। और वह वहां पहुंचेगी और वे कहेंगे, ओह, तुम काली हो, हम यहां अश्वेतों को काम पर नहीं रखते। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह अफ्रीका से थी, क्योंकि वह एकदम पेरिसियन फ्रेंच बोलती थी। अब अन्य जगहों पर इस तरह का भेदभाव नहीं होता था, लेकिन तब से जब भी वह फोन करती तो कहती, हाय, मैं मेडिन हूं, मैं अफ्रीकी हूं, मैं काला हूं, बस इसलिए कि उसे कहीं जाने के लिए बस किराए पर अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। यदि आप जानते हैं, वे अफ्रीकियों को काम पर नहीं रखेंगे। लेकिन किसी भी मामले में वह परफेक्ट पेरिसियन फ्रेंच बोलती थी। अंग्रेजी में आप ब्रिटिश अंग्रेजी के बारे में सोच सकते हैं। तुम्हें पता है, मैं एक अमेरिकी हूं। हम ब्रिटिश मानक के अनुसार बोलते हैं, हम एक तरह से भ्रष्ट अंग्रेजी बोलते हैं। यह केन्या और नाइजीरिया और अन्य स्थानों में उस तरह से अधिक निकट हो सकता है जिस तरह से हम इसे यहां अमेरिका में बोलते हैं। लेकिन किसी भी मामले में आप जानते हैं, हम सभी का अपना लहजा होता है। लेकिन पॉल ने एजियन उच्चारण के साथ ग्रीक बोलने की क्षमता विकसित कर ली थी, शायद इस बिंदु से एथेनियन उच्चारण भी। अटारी उच्चारण को ग्रीक का सबसे शुद्ध रूप माना जाता था, लेकिन किसी भी मामले में पॉल ने ग्रीस में समय बिताया है। वह अच्छी ग्रीक भाषा बोलता है और क्लॉडियस लिसियास प्रभावित है, जो स्वयं एक यूनानी है, भले ही वह एक ट्रिब्यून है। तो आप जानते हैं, वह कहते हैं, तो क्या आप यह मिस्री नहीं हैं? क्या आप उन शिकारी लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने एक समूह को जंगल में ले जाया? खैर, जंगल में बहुत सारी मसीहाई हलचले थीं। यह वह जगह है जहां आप रोमन हस्तक्षेप के बिना भीड़ खींच सकते हैं, हालांकि रोमन हस्तक्षेप तब हुआ जब वे यरूशलेम के बहुत करीब पहुंच गए, क्योंकि लोग जंगल में एक नए पलायन की उम्मीद कर रहे थे। यहां तक कि ल्यूक अध्याय 3 में, यशाया अध्याय 40 को पद 3 में उद्धृत करते हुए, हमारे भगवान के लिए जंगल में एक रास्ता तैयार करें। लोग जंगल में एक नए पलायन की उम्मीद कर रहे थे। ओशे 2 खोशे 11, यशाया 11, यशाया और बाद में यशायाह में भी। तो यह पता चला कि वह वहां से नहीं है। वह कहता है, नहीं, मैं वास्तव में टारसस का नागरिक हूं, जो कोई मामूली शहर नहीं है। खैर, नागरिक गौरव एक बड़ी चीज थी, शायद दूसरी सदी की शुरुआत में और भी बड़ी। आपके बीच बहुत सारी नागरिक प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन नागरिक गौरव एक बड़ी चीज थी। और आप जानते हैं, पॉल के लिए टारसस का नागरिक होना कोई छोटी बात नहीं थी। यह रोमन नागरिक होने जितना बड़ा नहीं था, लेकिन अब यह मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा यह है कि उसे इतनी अच्छी ग्रीक भाषा कैसे मिली। तो वह कहते हैं, मैं टारसस का नागरिक हूं। यह सच है। यही उनका जन्म हुआ था, भले ही उनका पालन पोषण यरूशलेम में हुआ हो। यह उनके अगले दर्शकों के लिए तनाव होगा। और आप जानते हैं, उसके पास जो कुछ है वह लेता है और उसे उपयोगी बनाता है। लेकिन आप जानते हैं, सच बोलने में द्विभाषावाद पॉल सक्षम है। आप जानते हैं, वह कहते हैं, क्या मैं भीड़ से बात कर सकता हूं? और इसलिए ट्रिब्यून सोचता है, ओह, वह इस भीड़ को और भी अधिक शांत कर देगा। तो पॉल बोलना शुरू करता है। उन्हें पहले ही कुछ हद तक चुप करा दिया गया है, लेकिन अब वे और भी शांत हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ट्रिब्यून ने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी है। और एक बार जब वह अरामी भाषा में बोलना शुरू कर देता है, तो वे वास्तव में शांत हो जाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, ओह, यह शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अन्य जातियों का समर्थक होगा, या कम से कम हमारी संस्कृति को बर्बाद करने या हमारी संस्कृति को कमतर करने की कोशिश करेगा। इसलिए वह न केवल अच्छी ग्रीक भाषा बोलता है, बल्कि वह अरामी भाषा भी बोलता है। हो सकता है कि उसकी अरामाइक थोड़ी सी पुरानी हो गई हो, लेकिन आप जानते हैं, उसका जन्म टारसस में हुआ था, लेकिन उसका पालन पोषण यरूशलेम में हुआ था, संभवतः इतनी जल्दी कि उसने न केवल ग्रीक सीख ली, बल्कि उसने अरामाइक भी सीख ली। अक्सर यदि आपका बच्चा एक से अधिक स्थानों पर बड़ा हो रहा है, या एक संस्कृति के माता पिता का बच्चा है, लेकिन वे किसी अन्य संस्कृति में पलेबधे हैं, तो बच्चे द्विभाषी हो सकते हैं यदि वे दोनों सुन रहे हों। और यहां पॉल के साथ भी यही मामला प्रतीत होता है। वह कहते हैं, उनका जन्म टारसस में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण यरूशलेम में हुआ। 22:3। टारसस, जैसा कि हमने पहले कहा था, एक विश्वविद्यालय केंद्र था, लेकिन कई टारसियाई लोगों ने अपना उन्नत अध्ययन, अपना तृतीयक अध्ययन विदेश में किया। हालांकि पॉल ने वास्तव में यरूशलेम में अपने तृतीयक अध्ययन से कहीं अधिक किया था। उनका उन्नत अध्ययन स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र के यूनानी रूप सेप्टुआजेंट में था। लेकिन वह कहते हैं, मैं टारसस में पैदा हुआ था, लेकिन मेरा पालन पोषण हुआ। और आमतौर पर जब आप ग्रीक साहित्य में उन शब्दों को एक साथ रखते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय यरूशलेम में बिताया, तो इसीलिए उसे अरामाइक मिला है। उन्होंने कहा कि वह पढ़े लिखे हैं। यह तीसरा चरण है। उनकी शिक्षा गमालियेल के चरणों में हुई थी। कुछ अनुवाद इसे इस तरह से नहीं रखते हैं, लेकिन वस्तुतः यह गमालियेल के चरणों में है। मिशना अबोट एक से एक वह एक शिष्य के लिए उपयुक्त मुद्रा थी। तुम्हें एक शिक्षक के चरणों की धूल में बैठना था। ल्यूक 10 से 39 में एक शिष्य के लिए भी यही उचित मुद्रा है। यह विवादास्पद क्यों है कि मार्था की बहन मरियम उस मार्ग में यीशु के चरणों में बैठी है? इसका एक कारण है क्योंकि आम तौर पर महिलाएं शिष्या नहीं थीं। यह एक असामान्य और असाधारण तरह की स्थिति थी। तो वह एक शिष्य की मुद्रा लेकर यीशु के चरणों में बैठी है। खैर, यहां पॉल गमालियेल के चरणों में है। वह उससे सीख रहा है। विडंबना यह है कि उसने उससे वह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं सीखी जो गमालियेल ने सिखाई थी, यानी इन लोगों को अकेला छोड़ देना। यदि ईश्वर उनके साथ है तो आप स्वयं को ईश्वर के विरुद्ध लड़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे, जैसा कि पॉल स्वयं को ईश्वर के विरुद्ध लड़ते हुए, बकरों के विरुद्ध लात मारते हुए और अंत में पलटता हुआ पाता है। और उस भ्रम को बाद में अधिनियम 26 में उजागर किया जाएगा, जिसके बारे में मैं शायद वहां बात नहीं करूंगा। इसलिए कभी कभी मैं कहीं और चीजों के बारे में बात करूंगा जब मैं कम विवरण में कुछ कवर करने जा रहा हूं। लेकिन राजा अग्रिप्पा और फेस्टस, जो यूनानी शिक्षा से शिक्षित थे, निश्चित रूप से यूरिपिड्स के भ्रम को पकड़ लेंगे। लेकिन किसी भी मामले में एक शिष्य के लिए उचित मुद्रा। गमालियेल संभवतः उन सभी में सबसे कुलीन फरीसी था, और ऐसा कहा जाता है कि गमालियेल के परिवार ने ग्रीक साथ ही हिब्रू क्लासिक्स धर्मग्रंथों में प्रशिक्षण दिया। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पॉल ने ग्रीक में यरूशलेम में टोरा के बारे में सीखा होगा, जो टोरा के बारे में सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। संभवतः उनका पूरा परिवार यरूशलेम चला गया था। शायद इसीलिए वह फरीसियों का बेटा होने की बात कर सकता है, क्योंकि संभवतः उसका परिवार यरूशलेम में फरीसी बन गया था। इसे कहीं और से ले जाया जा सकता था, लेकिन संभवतः यरूशलेम में। यहीं पर हम ज्यादातर फरीसियों के बारे में जानते हैं, और साथ में उनका भतीजा भी था। इसलिए जब तक उसकी बहन को शिक्षा के लिए वहां नहीं भेजा जाता, शायद नहीं, संभवतः पूरा परिवार वहां चला गया था। लेकिन किसी भी मामले में वह यरूशलेम में बड़ा हुआ और फिर गमालियेल के तहत तृतीयक स्तर पर शिक्षा प्राप्त की, और वह कहता है कि मैं कानून के प्रति उत्साही था। खैर, यह एक अच्छी बात हो सकती है, परमेश्वर के वचन के प्रति उत्साही होना। लेकिन इसका उपयोग एक विशेष तरीके से तेजी से हो रहा था, क्योंकि जब तक रोम के खिलाफ युद्ध की शुरुआत होती है, क्रांतिकारियों के समूहों में से एक को जीलोट्स कहा जाता है, जो उत्साही होते हैं, और उन्होंने अपने आदर्श के रूप में मैकाबीज को लिया, जो कानून के प्रति उत्साही थे, और मैकाबीज का मॉडल पीनहास था, जो कानून के प्रति उत्साही था। कितनी अच्छी तरह से पीनहास ने मुख्य याजकों में से एक के रूप में लोगों के लिए प्रायश्चित किया और महामारी को समाप्त किया। वह पुराने नियम के अर्थ में रोश हाकोहेन अभी तक मुख्य पुजारी नहीं थे, लेकिन वह मुख्य पुजारी परिवार का हिस्सा थे। वह हारून का पुत्र था। वह गया और उसने सबसे स्पष्ट जोड़े पर भाला चलाया जो खुले तौर पर पाप कर रहे थे, और प्लेग को रोक दिया। और भजनहार वास्तव में उसी भाषा का उपयोग करते हुए कहता है जो हम इब्राहिम और उत्पत्ति के लिए कहते हैं, कि यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया था। खैर, शाऊल ने पहले से ही उस मॉडल का उपयोग किया था जिसे उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना जाएगा। ईसाइयों को गिरफ्तार करके वह आगे कहते हैं, वह कानून के प्रति उत्साही थे। जब वह अधिनियम 26 में इसका उल्लेख करता है, तो वह यह उल्लेख करने जा रहा है कि उसने इसे पूरी जानकारी और महायाचकों के आदेश से किया है, जो वही समूह है जो अब उस पर आरोप लगा रहा है। वे इस अवैध गतिविधि में उसके साथ थे, जिसे रोमन दृष्टिकोण से अवैध माना जाएगा। तो पॉल यह संदेश देता है और फिर वह अन्य जातियों के पास जाने की बात करता है। यीशु के मंदिर के बारे में उनका दर्शन कहता है, अन्य जातियों के पास जाओ। और दंगा फिर भड़क उठता है। लोग अपने कपड़े उतार फेंक रहे हैं, शायद वैसा ही जैसा हमने स्टीफन के साथ बात की थी। वे हवा में धूल फेंक रहे हैं। उनके पास फेंकने के लिए शायद कोई पत्थर नहीं है, लेकिन वे अपनी धूल हवा में फेंक देते हैं। बेहतर होगा कि वे अपने पास खड़े सैनिकों के साथ कोई पत्थर न फेंकें, क्योंकि वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और पिछली पीढ़ी में भी उन्हें जवाबी कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। तो वे दंगे कर रहे हैं, वे कह रहे हैं, ऐसे आदमी के साथ रहना उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ल्यूक अध्याय 23 की भाषा का उपयोग करते हुए, जहां भीड़ यीशु के बारे में चिल्लाती है, उसे छोड़ दो, इस आदमी को सूली पर चढ़ा दो। तो स्टीफन ने मंदिर के बारे में बात की, वह मारा गया। पॉल ने मंदिर के बारे में बात की है, और भगवान ने हस्तक्षेप करने और उसकी जान बचाने के लिए रोमनों का इस्तेमाल किया। शायद इन सभी भविष्यवाणियों के साथ बहुत सारे लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और वास्तव में उसके रूपांतरण से पहले बाइबल कहती है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। संभवतः तब भी बहुत से लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की थी। लेकिन वैसे भी एक्ट्स की अंतिम तिमाही पॉल को हिरासत में संबोधित करती है। अधिनियमों की यह अंतिम तिमाही इतनी विस्तृत क्यों है? खैर, एक बात है, ल्यूक गवाह के रूप में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि यह पॉल के लिए क्षमा प्रार्थी हो गया है, जो ल्यूक एक्ट्स की अंतिम तिमाही का चरमोत्कर्ष है। हिरासत में जंजीरें शर्मनाक थीं। तो यहाँ पॉल पिता है, हम आज की भाषा में कह सकते हैं गैर यहूदी मिशन के पिता। इसलिए पॉल से जुड़ा कोई भी अपराध प्रवासी चर्चों और अन्य जातियों के मिशन पर प्रतिबिंबित करता है। पहले से ही फिलिप्पियों अध्याय 1 और 2, तीमुथियुस अध्याय 1 में कुछ लोग पॉल की जंजीरों के कारण उससे अलग होना चाहते थे। तो यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे ल्यूक को संबोधित करना होगा। एक्ट्स आंशिक रूप से लिखे गए हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक्ट्स का यही एकमात्र कारण है, लेकिन पॉल को सही साबित करने के लिए एक्ट्स आंशिक रूप से लिखा गया है। अर्थात सूली पर चढ़ाए जाने की कथा में यीशु की तरह, बिल्कुल यीशु की तरह। पिलातुस ने कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। हेरोदेस एंटिपास का कहना है कि मुझे इस आदमी में कोई दोष नहीं दिखता। और आपके पास वहां यीशु और यहां पॉल के बीच समानता है। जो लोग वास्तव में अपराध खोजने के प्रभारी थे, उन्हें कोई दोष नहीं मिला। पॉल वास्तव में दोषी नहीं था। उनकी निंदा राजनीतिक कारणों से की गई, कानूनी कारणों से नहीं, सामान्य ज्ञान की कमी के कारण भी नहीं। यरूशलेम जाना खतरनाक हो सकता था। पॉल क्यों जाता है? ल्यूक ने संग्रह का उल्लेख भी नहीं किया है, लेकिन पॉल दैवीय आवश्यकता के कारण जाता है। फिर वह एक तर्क था, प्राचीन वाग्मिता में एक मानक तर्क। यदि आपने कहा, भगवान ने मुझसे कहा या भगवान ने मुझे जाने के लिए कहा, तो यह आमतौर पर एक बहुत अच्छा तर्क माना जाता था। खैर, आपको ऐसा करना पड़ा क्योंकि आपको बताया गया था, और पॉल इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है। और ऐसा नहीं था कि भगवान अंधा हो गया था। भविष्यवाणियां स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि ऐसा होने वाला था। पॉल अंधा नहीं था। वह जानता था कि यह आ रहा है, लेकिन वह जानता था कि भगवान उसे वहां ले जा रहे थे। और यह उस पर भी फिट बैठता है जो हम पॉल के पत्रों में देखते हैं, क्योंकि पॉल रोमियो 15 में कहता है कि उसे यहूदिया में परेशानी की आशंका है। और आगे हम उससे सुनते हैं, वह रोमन हिरासत में है। तो किसी भी मामले में हमारे लिए क्या मतलब है? क्योंकि हम में से अधिकांश लोग पहले से ही पॉल को पसंद करते हैं। हम में से जो पहले से ही पॉल को पसंद करते हैं, उनके लिए एक्ट्स की अंतिम तिमाही का जोर हमें कानूनी, ऐतिहासिक और अन्य प्रकार की क्षमा प्रार्थना का मूल्य दिखाता है। जब भी संभव हो, लोगों की आपत्तियों का उत्तर देने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आवश्यक रूप से हमसे सहमत होंगे, लेकिन हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उनकी आपत्तियों का उत्तर दे सकें और अपने मामले को एक ठोस मामला बना सकें। खैर, पॉल रोमन हिरासत में है और अब उन्होंने फैसला किया है कि वे ट्रिब्यून चिलियार्क से पूछताछ करना चाहते हैं। आम तौर पर वह वही होता है जो फोर्ट्रेस एंटोनिया में पूरे रोमन समूह की कमान संभालता है। द ट्रिब्यून का कहना है कि मुझे यह पता लगाना है कि पॉल पर इस तरह का आरोप क्यों लगाया गया। हर कोई उससे, इस आदमी से इतना परेशान क्यों है? तो हम उससे पूछताछ करने जा रहे हैं और वे यातना, जबरदस्ती के तहत उससे पूछताछ करने जा रहे हैं। पॉल जंजीर में बंधा हुआ है और वे उसे पीटने वाले हैं। और वह कहता है, क्या रोमन नागरिक को पीटना वैध है? खैर, बिना मुकदमा चलाए उसे जंजीरों में डालना भी वैध नहीं था। तो वे पहले ही बहुत दूर जा चुके हैं। हो सकता है कि पॉल ने जानबूझकर इतनी दूर तक इंतजार किया हो, लेकिन पिटाई बहुत गंभीर हो सकती थी। और इस मामले में सेंचुरियन ट्रिब्यून के पास जाता है और कहता है, क्या आप जानते हैं कि यह आदमी रोमन नागरिक है? वह ट्रिब्यून पर उपकार करता है, क्योंकि ऐसा करने से ट्रिब्यून को बहुत परेशानी हो सकती थी। अब जरूरी नहीं, अगर किसी ने शिकायत नहीं की तो शायद वह बच गया होता, लेकिन अगर किसी ने शिकायत की तो गवर्नर अक्सर बच जाते थे, लेकिन उनके अधीनस्थ ट्रिब्यून्स अक्सर ऐसा नहीं करते थे। एक और गवर्नर था जिसे पहले वापस बुला लिया गया था, लेकिन उसके ट्रिब्यून ने, जिसने यहूदी लोगों की शिकायतों के जवाब में उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें राजनीतिक रूप से संतुष्ट करने के लिए अपने आदेशों का पालन किया था, उस व्यक्ति को खींचा गया और क्वार्टर किया गया और यरूशलेम की सड़कों पर घसीटा गया। उसकी हत्या की गई थी। इसलिए ट्रिब्यून के पास चिंतित होने के कुछ कारण हैं कि वह एक रोमन नागरिक के साथ गलत तरीके से दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है। मेरा मतलब है, रोम को सभी मृत्युदंडों को मंजूरी देने और प्रांतों में मृत्युदंड देने का पूरा कारण यह सुनिश्चित करना था कि रोम के प्रति उनकी वफादारी के लिए कोई भी रोमन नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार न करे। और इसलिए ट्रिब्यून पॉल के पास आता है और वह देखना चाहता है कि वह पहले से ही क्षति नियंत्रण में कितनी परेशानी में है। यह कैडबरी द्वारा बहुत समय पहले सुझाया गया था और कई लोगों ने इसका पालन किया है, जिनमें मैं भी शामिल हूं। वह पॉल के पास आता है और कहता है, ठीक है, मैंने अपनी नागरिकता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा, सबसे पहले, क्या आप रोमन नागरिक हैं? हाँ। खैर, मैंने अपनी नागरिकता बड़ी रकम से हासिल की। इसकी उसे बहुत कीमत चुकानी पड़ी। रोमन नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीके थे। एक का जन्म रोमन माता पिता से होना था, जैसे पॉल था। दूसरा पुरस्कार समूहों या व्यक्तियों, अक्सर नगर निगम अधिकारियों को दिया जाता था। दूसरी सैन्य सेवा थी, जो यहूदी सामान्यतः नहीं करते। दूसरा था मनुस्मृति। खैर, रोमन माता पिता से पैदा होने के बाद यह सबसे आम बात थी। पॉल के पूर्वज शायद इसी तरह रोमन नागरिक बन गए थे। और दूसरा रिश्वत थी। खैर, लिसियास ने यही किया। उन्होंने अपनी नागरिकता के लिए पैसे चुकाए। क्लॉडियस के शासनकाल के प्रारंभ में यह बहुत आम बात थी, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक लोगों ने इसे प्राप्त किया और इसीलिए उसका नाम क्लॉडियस लिसियास पड़ा, क्योंकि आप अपने उपकारक का नाम लेंगे। लिसियास उनका दिया हुआ नाम था। वह ग्रीक है, लेकिन क्लॉडियस लिसियास उसका रोमन नागरिक नाम है। हालांकि समय के साथ यह सस्ता होता गया, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों के पास मताधिकार था। लिसियास को उम्मीद है कि पॉल सस्ते में आउट हो जाएगा। इसके बजाय पॉल एक वाक्यांश का उपयोग करता है। वास्तव में यह एक लैटिन वाक्यांश को प्रतिध्वनित करता है, लेकिन यह ग्रीक में दिया गया है। मैं एक नागरिक के रूप में पैदा हुआ था, और ट्रिब्यून को एहसास हुआ, ठीक है, मुझे पॉल की मदद करने की जरूरत है। मुझे उसके साथ थोड़ा अलग व्यवहार करने की जरूरत है, और मुझे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अगर मैंने कोई नुकसान किया है तो वह पूर्ववत हो जाए और पॉल मुझे पसंद करे। लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि ये आरोप किस बारे में हैं, किसी भीड़ द्वारा नहीं, बल्कि विशेषज्ञों द्वारा। मुझे उनकी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए इस महासभा को एक साथ बुलाना होगा, और अगले सत्र में हम यहीं से शुरुआत करेंगे, जहां हमें भीड़ का एक और दृश्य देखने को मिलेगा। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह अधिनियम अध्याय 21 से 22 पर सत्र 21 है।